ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारत और सिंगापुर ने स्वास्थ्य और औषधि, शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर प्रणाली साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर भी सहमत हुए हैं, जिससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच आज हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया। सिंगापुर में वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा की जागरूकता, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान की साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने भारत आसियान संबंधों समेत आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर न केवल साझेदार देश है बल्कि हरेक विकासशील राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए गजट अधिसूचना आज जारी कर दी गई। इस चरण में 40 विधानसभा क्षेत्रों में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 17 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 26 विधानसभा क्षेत्रों में 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। चुनाव आयोग ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को होगी। 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। असम मंत्रिमंडल ने राज्य के मूल निवासियों की भूमि, भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए असम समझौते की धारा 6 पर न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति द्वारा की गई 80% सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि समिति की 67 में से 57 सिफारिशों को अगले साल 15 अप्रैल तक लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल आज आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहा है। ये दल राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का आकलन करेगा। इससे पहले केंद्रीय दल ने स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ ताडेपल्ली में आंध्र प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक की। देशभर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। आकाशवाणी दिल्ली से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज शाम 4:10 से FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर उपलब्ध होगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशभर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। पेरिस पैरालंपिक खेलों के 8वें दिन आज भारतीय टीम तीरंदाजी अभियान में शानदार खेल के साथ अभियान का समापन करने के लिए उतरेगी, जबकि स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह अपने दूसरे पदक के लिए मिक्स टीम रिकर्व ओपन स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे। हरविंदर सिंह ने पुरुषों के निजी तीरंदाजी रिकर्व ओपन फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। वे पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक के एक सिंगल संस्करण में सबसे अधिक पदक जीतने के लिए पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।